أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله وصلاة لأهلها. گفتگو ہماری اخروی سزاؤں کے باب میں جاری ہے اور آج یہ اس کی دوسری گفتگو ہے. اس گفتگو میں شہید مطہری رحمہ اللہ ان سوالات کا جواب دے رہے ہیں جو اخروی سزاؤں کے باب میں ہیں کہ اس عالم میں عمل اور اس عالم میں آخرت میں سزا کے درمیان تناسب نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے. اس عالم میں ایک شخص 40-50 سال گناہ کرتا ہے تو اس عالم میں بھی اسے 50 سال سزا ہو جائیں، 100 سال، 200 سال، لیکن خالدین فیہا کیوں ہیں؟ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے، ایک شخص اگر کسی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو اس کے مطابق اس پر اقدامات ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ اتنے کچھ تھوڑی سی مدت میں اس نے گناہ کیا ہے اور پوری زندگی وہ آخرت میں سزا کاٹے گا؟ اس کے جوابات میں جو اس کا پہلا حصہ تھا جو پچھلے درس میں گزر چکا، جس میں شہید مطہری نے اس دنیا اور دنیا جو موت کے بعد آنے والی دنیا ہے اس کے درمیان تعلق بتایا اور 4 اہم ترین فرق کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج جب یہ ان سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں تو اس کی بحث شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ عذاب کی 3 قسمیں ہیں. پہلی جو قسم ہے سزا کی اور جو دنیا میں دی جاتی ہے سزا کی، وہ قراردادی ہے. دوسری قسم علی اور معلولی ہے، اور تیسری قسم عینی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان دنیا میں جو سزا دیتا ہے وہ قراردادی ہے، یعنی اس نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا میں لوگوں کو سزائیں دیتا ہے. اجتماع کے اقلاء سزائیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی سگنل توڑ دیتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. اس سزا کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 بنیادی وجوہات ہیں سزا کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ مظلوم کی تشفی ہو. اب جس نے قتل، جو قتل ہو گیا، مقتول تھا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کے گھر والے جو ہیں انہیں ایک تشفی ہو جائے، ان کا ایک غم تھوڑا بڑھ جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے مقتول کے قاتل کو سزا دے دی. پہلی چیز ہے مظلوم کی تشفی. دوسری چیز ہے کہ جو جس نے جرم کیا، جو مجرم ہے، اس کو سرزنش کیا جائے، اس کو تنبیہ کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ وہ بات میں وہ کام نہ کرے یا دوسرے افراد اس سے عبرت حاصل کریں. یہ وہ تمام فلسفے ہیں اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں سزائیں دیتا ہے. اور یہاں پر ایک حاشیے میں شہید ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل ایک نیا نعرہ لگائے کہ سزائیں مت دو بلکہ اخلاقی تربیت کرو، کا یہ جھوٹ اور مغالطے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ جو مجرم ہے اس کی تنبیہ سزا سے ہوگی، سزا کے علاوہ اخلاقی جو تربیت ہے وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں بن سکتی. وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر. یہ نہ کہیں کہ آپ مجرم کو چھوٹ دے دیں اور انہیں ایک ایسے یونیورسٹی بھیج دیں جہاں اس کی تربیت ہو جائے اور اس کو سزا نہ دیں، اس سے معاشرے میں جرم بڑھے گا. تو بس پہلا ریزن یہ تھا جس کی بنا پر انسان کچھ سزائیں مقرر کرتا ہے. کیا آخرت میں بھی اسی وجہ سے سزائیں دی جائیں گی کہ مجرم کی سرزنش ہو، وہ آئندہ جرم نہ کریں، دوسرے افراد عبرت حاصل کریں، مظلوم کی تشفی ہو؟ کہتے ہیں نہ، آخرت میں اس لیے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہاں یہ ساری چیزیں جسے کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع ہے، وہاں اس کا موضوع ہی منتفی ہو چکا ہے. وہاں پر انسان مجرم بعد میں گناہ نہیں کر سکتا کہ اس کو سرزنش کی جائے یا دوسرے افراد عبرت حاصل کر کے گناہ نہ کریں یا مظلوم کی تشفی ہو، یہ سارے مسائل وہاں پر نہیں ہیں. دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہے اس کا ایک حصہ ختم ہوا، قراردادی سزائیں، وہ نہیں ہیں. آخرت میں اس وجہ سے سزائیں نہیں دی جائے گی. دوسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، علت اور معلول، یعنی 2 چیزوں کے درمیان علت اور معلول کا رشتہ. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب پی لے चाहे वो भूले से पी ले, चाहे उसे पेप्सी समझ के शराब दे दी जाए, फिर भी उसको नशा आ जाएगा, नशा आ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ असर कर रही है दूसरी चीज़ में, इल्लत और मालूल का रिश्ता है। तो बाज़ सज़ाएं जो इंसान को दुनिया में मिलती हैं वो इस वजह से मिलती हैं कि उसके लिए इल्लत और मालूल का रिश्ता है। मिसाल आपके सामने एक मिसाल पेश कर दें ताकि बात आसान हो जाए। जैसे मुतवक्किल अब्बासी था, उसका एक बेटा था जो मोमिन था, मुस्तनसिर, मुतवक्किल नासिबी शख्स था, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता था। एक बार उसने बीबी सैयदा की शान में गुस्ताखी की, तो उसके बेटे ने किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछा, या बास कहते हैं इमाम से पूछा, बास रिवायत में किसी और से पूछा कि इसको अब कत्ल किया जा सकता है। उन्होंने कहा हाँ, ये नासिबी है और उसका कत्ल ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम कत्ल करोगे तो चूंकि तुम्हारा वो बाप है तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, एक खैर का काम मैं करना चाहता हूँ, बेशक मेरी उम्र कम हो जाए। उसने अपने बाप को कत्ल किया, मुतवक्किल को, चंद दिनों बाद वो भी मर गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिस जो इल्लत हैं जिसके मालूल खुद ब खुद वजूद में आएगा, जिसको मुकाफात हम कहते हैं, मुकाफात अमल, तुमने ऐसा किया तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। कुछ ऐसे अमाले अगर इंसान ने वो अंजाम दिए तो उसके रिस्क में इजाफा होगा, कुछ ऐसे अमाले अगर इंसान ने वो अंजाम दिए तो ज़रूर उसको सज़ाएं मिलेगी। जिसमें से एक ये कि अगर वो अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी करता है और कतअ रहमी कर देता है, रिश्ते को तोड़ देता है, कतअ ताल्लुक़ कर देता है, तो उसकी एक सज़ा है कि उसकी उम्र कम हो जाएगी। ये इल्लत और मालूल, यानी ये ऐसा होगा, हर सूरत में ऐसा होगा कि आखिरत में भी इस वजह से सज़ा मिलेगी कि इल्लत और मालूल का रिश्ता, यानी इंसान ने जो गुनाह यहाँ पर किए उसका नतीजा ये निकलेगा, उसका मालूल ये। कहते ना, आखिरत इससे भी दकीक है, इससे भी बाला बात है, इससे भी आला सतह की बात है। वो क्या है? वो है तीसरी सज़ा जो आखिरत की सज़ा है, और वो है ऐनियत। ऐनियत यानी ये कि कुरान में है कि कयामत में जो नफ्स ने इस आलम में जो काम किया है, इंसान ने इस दुनिया में जो काम किया है, वो काम वो देखेगा, यानी वो ही काम वो देखेगा। ये नहीं है कि उसका अजर देखेगा, ये नहीं है कि उस काम का नतीजा देखेगा, ना, बेआई नहीं वो काम देखेगा, बेआई नहीं वो काम देखेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसे इस आलम में शऊर नहीं था, वरना हर नफ्स उसी चीज़ को देखेगा, यानी आलम आखिरत इसी दुनिया का बातिन है, इसी दुनिया की मलकूती सूरत है, ये दुनिया मुल्क है, इसी की जो दूसरी सूरत है, बेआई नहीं वो सूरत है, वो आखिरत है, वो उसका मलकूत है। कि कुरान ने कहा कि अल्लज़ीना याकुलूना अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि जो यतीमों का माल नाहक खा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आग को खा रहे हैं, वो अपने शिकम में आग को भर रहे हैं। ऐसा नहीं है गोया आग खा रहे हैं ना, गोया नहीं है, हकीकत में आग खा रहे हैं, यानी उसी गिज़ा की, जिस मेरे सामने तो गिज़ा है, यतीम का माल अगर किसी ने हड़प कर लिया जुल्म के तरीके से, नाहक तरीके से, तो उसको उसके सामने मेवाजात है, उसके सामने मुरगन गिज़ाएँ हैं, उसके सामने ये हैं, लेकिन इसी की जो मलकूती सूरत है, इसी की जो इसका जो बातिन है, वो कुरान कह रहा है आग है, ये नहीं है गोया आग है, हकीकत में आग है, हकीकत में वो आग को खा रहा है। ये जैसे शहीद मुतहरी ने ये मिसाल दी कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब एक खातून सवाल पूछने आई तो उसका कद छोटा था, तो पैगंबर की एक जौजा ने इशारा किया, यूँ जैसे छोटे कद के अफराद आते हैं तो हम में से कोई ऐसा शख्स होता है इशारा करता है, कोई अगर किसी की सेहत अच्छी हो तो इशारा करता है, जैसे किसी का कद छोटा हो, किसी का कद लंबा हो। तो पैगंबर ने अपनी जौजा से कहा कि निगल, यानी कह कर। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, कह क्यों करो? कहा कह कर। जब उसने कह किया तो एक बदबूदार गोश्त उसके मुँह से निकला, फरमाया ये तो मैंने नहीं खाया। कहा तूने गइबत की उस खातून की जो सवाल पूछने आई थी। तो पैगंबर ने अपने एजाज के साथ अपनी जौजा को उस फेल की मलकूती सूरत दिखाई, उस फेल की हकीकत बताई। कि जो गीबत कर रहा है ना, गोया नहीं है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, वो हकीकत में अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, लेकिन उससे उसका शऊर नहीं है। आलम आखिरत आलम शऊर है, आलम मलकूत है, वो आलम है जिसमें हिजाबात हट जाएंगे, वो आलम है कि इंसान ने जो किया है उसी को देखेगा, कि हर नफ्स दकीकन वो चीज़ देखेगा। और इसी तरह आप देखते हैं एक और आयत में भी ये बात हुई है कि वमैया अमल मिसकाल ज़र्रत इन खैर यरा वमैया अमल मिसकाल ज़र्रत इन शर यरा, जो ज़र्रा बराबर भी शर देखे करेगा वो उसको देखेगा, जो ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा वो उसको देखेगा। ये नहीं है कि खैर का असर देखेगा, शर का असर देखेगा, खैर की अजर देखेगा, शर की जो सज़ा है वो, ना ना ना, खुद खैर को देखेगा। आमाल तजस्सुम होकर उसके सामने पेश हो जाएंगे, वो जो नमाज़ कहते हैं नूरानी हालत में आ जाएगी, तो खुद नमाज ऐसा नहीं एक नमाज है और एक नूरानी हालत है, दो अलग अलग चीज़ें, ना वो ही नमाज है जो नूरानी हालत में उसके सामने आ जाएगी, वही नमाज है, लेकिन उसका मलकूती चेहरा है, उसका बातनी चेहरा है, उसका वो चेहरा है जो उन अफराद को नज़र आते हैं जिनके आंखों के सामने से हिजाबात रफ हो जाते हैं। तो आलम आखिरत आलम मलकूत है। अब जिस शख्स ने इस दुनिया में अपने आप को ऐसा बना लिया है, यानी इतने गुनाह अंजाम दे दिए, इस कदर अपने आप को बना लिया कि उसका आलम मलकूत ये कि वो आग है, यानी उसका आलम मलकूत ये कि वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा, कोई चीज़ खैर है ही नहीं उसमें। उसने अपने आप को ऐसा बना लिया जैसे आप देखते हैं कि क़यामत में कोई शख्स फलां हैवान की सूरत में उठेगा, फलां हैवान की सूरत में होगा, तो वो इस काबिल ही नहीं कि जन्नत में जाए। उसका यानी ऐसा नहीं कि परवरदिगार ने उसके ऊपर ये किया है कि तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें ये सज़ा देंगे, ना, बल्कि खुद जो उसने काम किया है उसकी सूरत, उखरवी सूरत ये निकलेगी। परवरदिगार का लुत्फ़ और करम जारी है, लेकिन अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि परवरदिगार की रहमत से वो मुराद नहीं जो हम दुनिया में रहमत रहमत करते हैं, शफ़क़त करते हैं, रऊफ़ और मेहरबान, बल्कि परवरदिगार की रहमत से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स में इस्तेदात है तो उसको वो चीज़ दे देना। अगर किसी शख्स में इस्तेदात है और एक आगे बढ़ने की, एक कुव्वत से फेल में आने की, तो वो इस्तेदात उसको दे देना, ये परवरदिगार की रहमत से तकाज़ा है। अगर एक पौधा दरख्त बनना बन सकता है तो परवरदिगार अपनी रहमत देगा और वो दरख्त बन जाएगा। तो वो परवरदिगार की रहमत आखिरत में भी उसके शामिल हाल होगी, लेकिन उसका जो मलकूत है, उसका जो आलम बातिन है, वो ऐसा हो जाएगा कि वो मुकम्मल आग हो जाएगा। इसलिए ये सवाल करना कि 70 साल उसने गुनाह किए तो फ़कत 70 साल उसको सज़ा मिले, ये सवाल बेमाना हो जाता है। जब इंसान हकीकत है उखरवी सज़ा की हकीकत को जान लेते हैं तो कहते हैं ना ये सवाल बेमाना, क्योंकि 70 साल भी उसे परवरदिगार आग में नहीं डाल रहा, उसी का अमल है। वो जो यतीम का माल खाया ना, उसने आग खाए, आग खाई है, जब आग खाई है तो आग ही नज़र आएगी उसको। अब जिस हद तक वो इस दुनिया में या विलायत खुदा और इलाही नुमाइंदों की विलायत में उसने ज़िंदगी बसर की, या किस जिस हद तक उसने शैतान और उसके औलिया और तागूत की अंदर उसने ज़िंदगी बसर की, अब जैसे उसकी ज़िंदगी होगी उसी का ही चेहरा उसके सामने आलम आखिरत में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं होगी उसमें। इसीलिए जो अफराद यहाँ पर हैं वो देखते हैं पैगंबर के पास एक सहाबी आया जिसमें पैगंबर ने उनसे सवाल किया कि बताओ कई फसबात है, तुमने सुबह कैसी की? तो उसने कहा मैंने सुबह इस हाल में की कि यकीन की हालत में की। क्या क्या दलील है? कहा मैं देख रहा हूँ कि अहले जहन्नुम जहन्नुम में, अहले जन्नत जन्नत के मज़े उड़ा रहे। तो वो अभी से देख रहा था, क्यों? क्योंकि लोगों के मलकूत को देख रहा था, लोगों की असली हालत को वो देख रहा था। और आज भी आपको ऐसे उर्फा नज़र आते हैं कि जो मसलन बता देते हैं, यानी दकीकन वो चीज़ बता देते हैं। तो जब इंसान इस जैसे सोचता है तो फिर ये सवाल उसके जहन से ख़त्म हो जाते हैं और किसी हद तक उससे समझ में आता है कि ये आखिरत में सज़ाएं क्यों दी गई। बस सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।